ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. வர்த்தமான சமய கே ஹிசாப் சே யே தோ ஹம் சபி ஜானதே ஹம் கே துனியா மே பி அநேக பிரகார் கே தனாவ் சாஹே ராஷ்ட்ரிய ஸ்தர் யா அந்தராஷ்ட்ரிய ஸ்தர் பர் விக்சித் ஹோதே ஜா ரஹே ஹம் ஆர் இசிலியே பாபா நே ஹமே பஹத் சஹஜ யே சிக்ஷாயே தி கி பச்சே தும்ஹே அப்னே தபஸ்யா கே அக்னி கோ தேஸ் கர்னா ஹே. கியூகி அந்திம் சமய கே நஜாரோ கோ தேக்னே கே லியே பி ஹிம்மத் சாஹியே சக்தி சாஹியே. ஆர் ஜேசே பாபா நே ஹமேஷா யே பாத் ஹமே பக்கி கராய் கே சாட்சிபன் கி அவஸ்தா கோ விக்சித் கர்னே கி ஜரூரத் ஹே. கியூகி யஹி அந்த மே ஹமே அச்சல் அடோல் ஆர் ஏகாகிரசித் ஹோகர் கே பாபா கி யாத் மே சஹஜ தன் சே அலக் ஹோனே கி சக்தி பிரதான் கரேகா. தோ தபஸ்யா அர்த்தாத் க்யா? தபஸ்யா கே லியே பாபா நே அவ்யக்த முரலியோ மே யே பாத் பஹத் அச்சே சே ஸ்பஷ்ட கீ ஹே கி ஜப் கோய் பி பாத் கா த்ருட்தா சம்பன் அப்யாஸ் கர்தே ஹே தோ வோ தபஸ்யா சஹி ஹோதி ஹே. உஸ்மே லகன் படத்தி ஹே ஆர் அக்னி பிரஜ்வலித் ஹோதி ஹே. பினா தபஸ்யா கே கிசி நே பி சன்சார் மே கோய் சீஜ் ஹாசில் நஹீ கியா ஹே. யானி ஜப் வோ த்ருட்தா அந்தர் மே ஆ ஜாதி ஹே ஆர் த்ருட்தா கே சாத் அப்யாஸ் கர்னா ஷுரூ கர் தேதே ஹே தப் உஸ்கி பிராப்தி யா அச்சீவ்மெண்ட் ஹம் பஹத் சஹஜ ரீதி சே கர் சக்தே ஹே. वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन अपने आप में एक तपस्या है. क्यों ये ब्राह्मण जीवन तपस्या है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जब हमें मनुष्य से देवता बनना है और उसके पहले संपूर्ण फरिश्ता बनना है तो कई बातों का अभ्यास हम स्वतः इस जीवन के अंदर करते रहते हैं. कई बातों से हमने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है ताकि बाहर का वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े. तो इसलिए कहा यह ब्राह्मण जीवन अपने आप में तपस्या है. लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में भी हर एक ब्राह्मण को चार तपस्या करनी है. चार अभ्यास के ऊपर विशेष अटेंशन हमें देना है. इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण जीवन के चार तप है. और वो चार तप जिन्होंने कर लिए वो उस कर्मातीत अवस्था को या जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है उस फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं. तो ये चार तप कौन से हैं जिसका गायन या यादगार भक्ति में भी है और भक्ति में भी उसका महत्व है? तो पहला तप जो है हमारा, जो हमें ब्राह्मण जीवन में अभ्यास निरंतर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो करना है, वो है आत्म अभिमानी या देही अभिमानी बनने का। बाबा ने हम सब बच्चे के सामने ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है कि बच्चे पहले दिन भी आत्मा का ज्ञान मिलते ही आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास हम प्रारंभ कर देते हैं और अंतिम स्वरूप भी आत्म स्वरूप में स्थित होकर के देह त्याग करना है। तो पहला पाठ भी आत्मा है, अंतिम पाठ भी आत्मा है और इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन में आत्माभिमानी निरंतर हम बनते जाए उसका कितना अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन मुरली के अंदर किसी न किसी रूप से बाबा इस बात को अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के बैठे हो, देही अभिमानी होकर कर्म करते हो, मना हर स्टेप पर, हर कदम पर ये बात हमारे मन के अंदर हमें अटेंशन में रखना है कि जब हम चलते फिरते उठते बैठते कर्म कर रहे हैं तो देही अभिमानी होकर कर्म करना है और जब हम कर्म से फ्री हो जाते हैं, योग में बैठते हैं, उस समय आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास जितना हम करते जाते हैं उससे प्राप्ति क्या है? उससे प्राप्ति यह है कि एक तो सहज शरीर से हम डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय जब शरीर छोड़ना होगा और शरीर के साथ ही हमारा अटैचमेंट होगा तो डिटैच होकर के सहज हम इस शरीर से अलग नहीं हो पाएंगे और कष्ट बहुत होगा शरीर छोड़ने का। इसीलिए बाबा जीते जी मरने का हमें अभ्यास कराते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होना माना जीते जी देह से अलग होना, ये अभ्यास हमारा सहज डिटैचमेंट, शरीर के भान से अपने आप को ऊपर उठाना और नष्ट मोहा बनने में भी हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर अपनी देह के आकर्षण से ही हम न्यारे होने का अभ्यास कर रहे हैं निरंतर तो नेचुरल है कि देहधारियों से भी हमारा नेचुरल डिटैचमेंट होने लगेगा। प्यार से सबके साथ हमें व्यवहार भी करना है, तोड़ भी निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सबको आत्मिक भाव से देखना भी है लेकिन साथ ही साथ न्यारा और प्यारा ये सहज हम स्थिति को विकसित कर सकते हैं। न्यारा माना किनारा करना नहीं या डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर देना नहीं, लेकिन बहुत सहज रीति से सबके साथ प्यार भरे संबंध में आते हुए भी आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जब करते हैं, देखते हैं, वार्तालाप भी अगर होता है और आत्मिक स्थिति के द्वारा हम आत्मिक दृष्टि डेवलप कर लेते हैं तो उससे हमें ही प्राप्ति और फायदा होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा अभ्यास, सारा जीवन भर का अभ्यास है। तब कहा आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास जो करते हैं माना तपस्या है, आत्म स्थिति की तपस्या है। तो ये पहला तप है ब्राह्मण जीवन में। दूसरा तप ब्राह्मण जीवन का है ब्रह्मचर्य का तप। ब्रह्मचर्य की भी एक तपस्या है जिसका गायन और महत्व भक्ति मार्ग में भी बहुत है और लोग उसको महान आत्मा समझते हुए उनके आगे झुकते हैं कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ये बाल ब्रह्मचारी है, तो उस कारण से उसके सामने उस तप के आगे दुनिया भी झुकती है। तो ब्रह्मचर्य का तप भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तब से लेकर के अपनी इस पवित्रता को किसी भी रूप में खंडित न होने दे उसका हमें निरंतर अटेंशन रखने की आवश्यकता है। और जितना उसका अटेंशन रखते हुए हर कदम हम उठाते हैं, चलते हैं, व्यवहार में आते हैं सबके साथ, तो बहुत बड़ी सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में भी कोई आत्मा अगर सिद्ध आत्मा बनती है तो उसका कारण है कि जब उसने उस ब्रह्मचर्य को मन वचन कर्म में अपनाया हुआ है। तो इसीलिए ये तपस्या भी हमारी अंत तक निरंतर बनी रहे, कहीं भी बीच में खंडित न हो, उसका अटेंशन रखते हुए चलना है। दुनिया में लोगों ने स्थूलता के तक तो ब्रह्मचर्य को अपनाया है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा देते हुए ब्रह्मचर्य माना ब्रह्माचारी इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कि ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया उस आचरण पर हम कदम पर कदम रखते हुए चले, ये कैसा गहन तपस्या कहो, गहन अभ्यास, ताकि कहीं पर भी चूक न हो जाए। निरंतर इस अभ्यास में भी हमें रहना है और दृढ़ता के साथ इसको हम पालन करते हैं, ये हमारी शक्ति बन जाती है। हर लेवल की पवित्रता को बाबा ने अपनाने के लिए जब कहा, खाली स्थूल तक नहीं लेकिन सूक्ष्म मन में भी किसी के प्रति अपवित्र भाव, अपवित्र संकल्प उत्पन्न न हो, ये तपस्या है। और बिना तपस्या के इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। भावनाओं में इतनी शुद्धि हो, हर आत्मा के प्रति भी वो शुद्ध भाव, पवित्र भाव निर्मित हो, हमारी दृष्टि की पवित्रता कितनी श्रेष्ठ है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो भी उस दैहिक भाव से ऊपर आत्मिक भाव के रूप में देखना ना? और कोई प्रकार का आकर्षण मन या वृत्ति के अंदर भी ना आए, ये अटेंशन रखने की जरूरत। इसलिए कहा ये एक तपस्या है। तपस्या के अंदर कोई सहूलियत नहीं होती है। देखो, दुनिया में भी जिन ऋषि मुनि कोई महान आत्मा ने तपस्या की, चाहे ध्रुव को ही ले लो कि जब उसने एक टांग पर खड़े रह करके तपस्या की कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसने सहूलियत नहीं अपनाई कि भाई रात्रि के समय तो मैं थक जाऊंगा, सारा दिन मैं करूंगा, लेकिन रात्रि को मैं दोनों टांग पर वापस आ जाऊंगा और सो जाऊंगा, या बारिश आ गई तो मैं अंदर आकर के तपस्या करूंगा, ये एक टांग पर वापस खड़ा हो जा। तपस्या माना जिसमें कोई सहूलियत नहीं होती है, तपस्या माना निरंतर उसको करते जाना है। तो इसी तरह आत्माभिमानी की तपस्या या ब्रह्मचर्य की ये तपस्या जो है उसमें सहूलियत नहीं होती है कि भाई इतना समय तो कर लेंगे, एक साल तो कर लेंगे या दो साल कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। सहूलियत नहीं होती है उसमें। कोई भी प्रकार के डनलप के तकिए हम नहीं लगा सकते हैं कि भाई ये होगा तो कर लेंगे, या कोई कंडीशन नहीं होती उसके लिए कि भाई ऐसा होगा तो हम करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। ये सहूलियत नहीं तो वो तपस्या ही नहीं है। तपस्या माना निरंतर उसी संकल्प के अंदर दृढ़ता के साथ लगे रहना, लगन उसके प्रति हो, ये है तपस्या। तो ब्रह्मचर्य की तपस्या भी हमको संपूर्णता को प्राप्त करने में मदद करती है। या दूसरा शब्द में मैं कहूं तो हमारे चरित्र को श्रेष्ठ करने के लिए या एक पात्र बनने के लिए ये एक बहुत बड़ा तप है, और इस तप की शक्ति भी कोई कम नहीं है। लेकिन उसके लिए जैसे हम अपने मन वचन कर्म में भी चेक करें कि कहीं पर भी लीकेज तो नहीं हो रहा है। लीकेज माना, लीकेज किसमें होता है कि जब हमारे मन के अंदर कोई नेगेटिव संकल्प आ जाता है या नेगेटिव भावनाएं किसके प्रति उत्पन्न हो जाती है तो ये ब्रह्मचर्य का तप भी लीकेज, उसकी शक्ति जो है वो क्षीण होना चालू हो जाती है। तभी बाबा कहते हैं कि नेगेटिव तो क्या व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। यहां तक बाबा ने कह दिया कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जब चलाते हैं तभी भी हमारी ये तपस्या खंडित होने लगती है, और वहां से ये तप के द्वारा जो शक्ति हमने हासिल की है वो शक्ति हमारी क्षीण होने लगती है। इसलिए ये लीकेज को हमें बंद कर देना है। तीसरी तपस्या है हमारे जीवन की, वो है निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्यास। निरंतर बाबा की याद कितना याद करना होगा हमें, कितना याद करना होगा ये तपस्या हमें कितनी करनी होगी? तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते एक घड़ी, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो पुनः आधी, इतना तो करो याद। एक घड़ी माना 8 घंटा। बाबा की घड़ी अपनी है, एक घड़ी का मतलब बाबा का है 8 घंटा। 8 घंटे तक निरंतर बाबा की याद हमारे अंदर बने, इतना हमें अभ्यास करना है। अच्छा, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी करो, कितना हुआ 4 घंटा तो करो। अच्छा, 4 भी नहीं कर सकते, आधी भी नहीं कर तो पुनः आधी, माना 2 घंटा तो करो, 2 घंटा तो करो, उसकी पुनः आधी नहीं बोला है बाबा ने। माना प्रतिदिन, प्रतिदिन हमें रोज 2 घंटा का चार्ट याद का जरूर बनाना है, इसको बढ़ाते जाना है, कम नहीं करना है। आज तो सभी ने 2 घंटे से ऊपर ही कर लिया, 2 बजे से उठे थे ना सभी, कितने लोग उठे थे 2 बजे से, वाह। तो 2 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटा तो सुबह सुबह ही, आधी आधी की पुनः आधी तो उसी समय कर लिया है ना, और अब तक 4 घंटा तो हो गया होगा, मुरली क्लास के 1/2 घंटा किया होगा कईयों ने, तो वो भी हो गया एडिशन 3 घंटा। और हर क्लास के पहले अभी जो 15 मिनट 1/2 घंटा योग करेंगे तो 4 घंटा तक तो अब तक हो गया, तो आधी घड़ी तो हो गई, तो आज सारे दिन में पूरी घड़ी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। मधुबन आते हैं तो ये अभ्यास करने को तो मिलता है कि नहीं। मधुबन में यही तो इस भूमि की कमाल है, बाबा ने ऐसे ही ये भूमि थोड़ी चुनी है, तो इसीलिए इस भूमि की ये कमाल है कि यहाँ पर आकर के न कोई और कारोबार है, न कोई बात की, बस जितना अपनी तपस्या करना चाहो तो एक घड़ी का चार्ज जितना दिन यहाँ रहते उतना दिन तो हम कर ले कम से कम। और नया साल जब आरंभ करना है तो नए साल में भी हम आठ घड़ी से, एक घड़ी से अपना चार्ट आरंभ करें तो सारा साल कैसा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो इस बार संकल्प करेंगे, आज तो चलो भाई जी ने उठा दिया 2 बजे सबको बुला लिया, लेकिन 31 तारीख को भी अगर बैठ जाए तो पूरी नाइट भट्टी करने के लिए बैठ जाए तो कैसा रहेगा, तो नया साल कैसे करेंगे। देखो दुनिया में लोग जो है ना रात को जागते हैं और रात को जाग करके नया साल मनाते हैं 12 बजे तक और फिर 1 बजे 12 बज के जैसे ही 5 तो खूब मना एंजॉय करेंगे, रात को मनाते। बाबा ने हम बच्चों को कहा रात माना तामसिकता अधिक होती है, इसीलिए उनके अंदर वो तेज नहीं होता है रात को जागने का भी। लेकिन हम जो है अमृत वेले को नया साल का वेलकम करें, अमृत वेले में नए साल को वेलकम करें, तो ये तपस्या कैसी होती है, शुद्ध सात्विक। तो अंग्रेजों वाली सिस्टम बाबा ने भी बंद कर दिया। अभी पहले बाबा भी रात को 12 बजे तक विदेशियों के कारण बैठते थे, लेकिन अभी बाबा ने भी वो सिस्टम कई सालों से बंद कर दी कि रात को 12 बजे तक नहीं बैठते। और सुबह बच्चे अमृत वेले अच्छी तरह से योग के साथ नए साल को आरंभ करे तो कैसा सारा साल जाएगा बताओ। तो इसीलिए यहाँ आए हैं तो कम से कम ये एक घड़ी वाला अभ्यास तो जरूर जरूर करें कि नहीं करना चाहिए कि वहाँ कर लेंगे बाद में देख लेंगे हो जाएगा। यहाँ तो कम से कम बाबा के घर में आए, बाबा के घर को क्या कहती, माताएं हमेशा कहते मायके में आए हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता। मायके जाते तो कोई काम नहीं करना पड़ता है ना, सब बना बनाया तैयार मिलता है। तो मायके में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, तो कई बार घर में आ गए ना तो थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यहीं रियल तपस्या करने का चांस मिलता है। वहां जाने के बाद तो फिर वही गृहस्थी में पड़ जाएंगे तो तपस्या करने का चांस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि निरंतर बाबा की याद बनी रहे, उसका इस तरह से अभ्यास करो, चाहे कुछ भी हो जाए तो अंदर से हाय बाबा ये नहीं निकलना चाहिए। बाबा को याद करो तो प्रेम से याद करो, हाय बाबा क्यों करें। दुनिया हाय हाय करती रहती है, हाय एक दूसरे को हाय है ना, ग्रीट करेंगे तो भी हाय, तो हाय हाय करती है, लेकिन यहाँ हमें तो क्या करना है, वाह वाह करना है कि कुछ भी हो जाए वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह है ना। तो वाह वाह करते हुए हमें हर दृश्य के अंदर भी बाबा की याद को समाना है, चाहे वो दृश्य अच्छा हो या कैसा भी हो, दिल पसंद न भी हो तो भी अगर आप कहो वाह बाबा वाह, तो बाबा कहते अगर वो सीन वाह वाह नहीं होंगी तो भी वाह वाह हो जाएगी, हो जाएगी। इतनी ताकत है हमारे संकल्पों में, इतनी ताकत है कि जैसे ही आपने वाह बाबा वाह कहा तो वो दृश्य वाह वाह न हो, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल गए तो वो वाह वाह हो ही जाएगा। वाह वाह करके तो देखे, मतलब से भी नहीं करना है वाह वाह, लेकिन रियल में अंदर में ऐसा अभ्यास हम कर दे कि वाह 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 वाह, जैसे बाबा बच्चों का गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह वाह बच्चे वाह, तो हम भी एक गीत को ऐसा गाना आरंभ करें, वाह 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 वाह, हर एक बात में वाह वाह को ढूंढ लो, समझ लो कि इस दृश्य में क्या वाह वाह था, है ना। तो इस तरह से अभ्यास बाबा की याद का निरंतर बन जाए तो ये तीसरा तप है। और चौथा तप हमारा है कौन सा, जो भी निरंतर करते रहना है, जैसे ये तीन चीज निरंतर है उसमें खंडित नहीं होना चाहिए, तो चौथा तप ब्राह्मण जीवन का है कि अपने संस्कारों का परिवर्तन करना, दिव्यकरण करना, संस्कारों में दिव्यता भरना। तो संस्कार परिवर्तन ये भी एक तप है। लोग अपने संस्कारों पर दुनिया में ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं चलता है, होता है, चल ही रहा है, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, हमने भी किया तो क्या है। आप अगर अपने बच्चे को भी कोई बात अच्छी सिखाना चाहते हैं और उसको कहते हैं ये नहीं करना चाहिए तो क्या कहते हैं, अरे सब करते हैं ना, तो हमने किया तो क्या वो उसमें नुकसान हो गया। नहीं, सब करते हैं तो भी मुझे नहीं करना है, ये है संस्कारों का परिवर्तन। लेकिन यहाँ बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमें खुद के संस्कारों पर ज्यादा ध्यान देना है। अक्सर ब्राह्मणों का क्या बयान होता है, इसके संस्कार ऐसे, इसके संस्कार ऐसे, इसके संस्कार, इसको संस्कार परिवर्तन करने की जरूरत है। तो दूसरे के ऊपर जब दृष्टि चली जाती है मेरी, इसके संस्कार ऐसे है, ये परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाएगा, नहीं, कोई करे न करे या किसी को मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे अपने आप को ही चेंज करना है, मुझे अपने आप को ही परिवर्तन करना है। जिसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया वो प्राप्त कर लेता है, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे संस्कारों का दिव्यकरण, ये भी एक बहुत तप गहरा है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। अपने संस्कारों को मोड़ने के लिए तपस्या क्यों कहा इसको, क्योंकि कोई भी चीज को जब गर्म करते हैं ना, लोहा भी गर्म होगा तो जिस आकार में मोड़ना चाहो मोड़ सकेंगे, नहीं तो नहीं मुड़ेगा। तो इसीलिए ये तपस्या है कि जब हम गहन तपस्या की अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित करते हैं तो संस्कारों को जिस तरह से हम मोड़ना चाहे उसको मोड़ सकते हैं, निखार सकते हैं, उसकी एलॉय को जला सकते हैं और संस्कारों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत गहरा तप है संस्कार परिवर्तन का, और तभी लोगों को भी ये तपस्या दिखाई देंगी कि हाँ इसका तप जो है वो नजर आता है, कि उसके अंदर वो तेज चेहरे पर भी आने लगता है और हर कोई महसूस करते हैं कि नहीं, इसका जीवन एक तपस्या है। क्योंकि ये चारों प्रकार का तप जिसने जीवन में किया वो कितनी महानता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस तप में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा आता है, सबसे बड़ा विघ्न कौन सा आता है, ये चारों तप में सबसे बड़े विघ्न कौन से हैं, चारों प्रकार के तप में चार विघ्न हैं, और विघ्न कौन से हैं, पहला मैं, दूसरा मेरा, तीसरा आलस्य और चौथा अलबेलापन। ये चार विघ्न है इसमें, मैं, मेरा, आलस्य और अलबेलापन, ये चार विघ्न जब आ जाता है, या तो मैं करना आरंभ कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने इतना योग किया, उसका भी अहंकार आना शुरू हो जाता है, मैंने आज 8 घंटा कर लिया, मन हम दूसरे के आगे अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि मैंने किया 8 घंटा, है ना? और जब ये भावना अंदर आ जाती है कि मैंने किया ये 8 घंटे का तप, तो क्या होता है, वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। या ये जब हम सिद्ध करने लगते हैं कि मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरी धारणा बहुत अच्छी है, मेरी पवित्रता की शक्ति बहुत अच्छी है, नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप ये तपस्या करेंगे और जब आपके अंदर वो निखार आना शुरू होगा, तो अवश्य अवश्य लोग आपको कहने लगेंगे, बहुत परिवर्तन आप में नजर आता है, बहुत अच्छा, महिमा जरूर करेंगे। लेकिन जब कोई महिमा करते हैं तो क्या कहना चाहिए, करण करावनहार बाबा है, बाबा ने कराया है, बाबा ने हमें इतनी शक्ति दी। तो जब बाबा को सामने ले आएंगे तो ये विघ्न जो है, ये विघ्न नहीं, माया आलस्य अलबेलापन में लाने का पूरा प्रयत्न करेगी, क्योंकि ये तप को भंग करने में सबसे बड़ा तो आलस्य अलबेलापन का ही रोल रहता है, कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई डनलप के तकिये लगाना चालू कर देते हैं। इसीलिए ये तीनों तपस्या का फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल स्वरूप क्या है, तो फाइनल स्वरूप जो बाबा के अंतिम महावाक्य, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, और चौथा निर्विघ्न भव, निर्विघ्न बन जाते हैं। विघ्न के ऊपर भी अगर हमने अधिकार प्राप्त कर लिया तो निर्विघ्न भव हो गए। तो ये चारों तप का फाइनल रिजल्ट निराकारी आत्मअभिमानी स्थिति से, निर्विकारी पवित्रता के ब्रह्मचर्य व्रत के तप से, निरहंकारी जब संस्कारों का दिव्य करण हो गया, उसका अहंकार समाप्त हो गया, और चौथा बाबा की निरंतर याद से निर्विघ्न, क्योंकि बाबा की सकाश लेते जाते हैं तो विघ्न कोई सामने ठहर नहीं सकता है, तो निर्विघ्न स्वरूप हमारा सहज बन जाएगा। तो ये चार तप से, ये चार स्थिति, ये फाइनल रिजल्ट है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में पहुंचने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल में जीवन के अंदर धारणाएं दिखाई देती है कि हाँ, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उस तरफ आगे जा रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होगा? उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है कि जब तपस्या की अग्नि अंदर में प्रज्वलित होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो जैसे सोना मुलम्मा हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक इसी तरह आत्मा भी निर्माण, नम्र, मुलम्मा, एकदम निर्मल बनने लगती है, और उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ये उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है कि उसकी वाणी के अंदर भी इतनी निर्मलता, ट्रांसपेरेंसी, कोई हेरा फेरी वाली वाणी नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसी वाणी नहीं, लेकिन एकदम निर्मलता हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल सबूत जीवन का बनने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तपस्या का प्रैक्टिकल स्वरूप तो अपने आप में देखो कि सचमुच अगर मेरी तपस्या है तो निमित्त भाव, निर्माण भाव निर्मल वाणी मेरी बनती जा रही है, पहले से मेरी वाणी में परिवर्तन आया है, क्योंकि वाणी तो दिखाई देने वाली चीज है, देने वाली चीज है। नम्रता है या नहीं है ये तो दिखाई देने वाली चीज है। कितना निमित भाव रखते हुए हर कर्म करते जाते ये दिखाई देती है हर एक को। तो ये प्रत्यक्ष हमारे स्वरूप की धारणाएं बनने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो फाइनल स्टेज निराकारी तक पहुंचने के लिए ये जो प्रैक्टिकल अपने कर्म में दिखाई देने लगे तब समझना चाहिए कि हाँ हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इस तपस्या में हम सफल होते जा रहे हैं। अगर ये तीन चीज नहीं है मेरी वाणी में कर्म में व्यवहार में, न निर्माणता है, न निर्मलता है, न निमित भाव है, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई अटक है। और अटक होगी तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं न अटकना है, न लटकना है, न भटकना है। न अटकना है, न लटकना है, न भटकना है, क्योंकि जो अटका वो लटकेगा जरूर। भाई कहीं कुछ न कुछ आधार पकड़ करके लटकने के लिए प्रयत्न करेगा, और लटकने लगा तो भटकना तो जरूर होगा ही, उसका स्वाभाविक है। तो इसलिए न अटकना है, न लटकना है। दादी जानकी और एक बात जोड़ देती है इसमें, न चटकना है, है ना? दादी जानकी हमेशा न अटकना है, लटकना है, चटकना है, न भटकना है, है ना? तो ये चारों भी नहीं होना चाहिए, तब समझो कि हाँ हम अपनी तपस्या में सफल होते जा रहे हैं, और बहुत सुंदर उसका रिजल्ट आप अपने जीवन के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव करने लगेंगे। ये जीवन के अंदर जैसे जैसे हमारे आने लगता है, तो हमारी तपस्या से हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट होने लगते हैं। हमारी तपस्या से जिसके साथ हम व्यवहार में आते हैं वो भी हमें संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट देते हैं। और जितनी हमारी ये तपस्या पावरफुल होती जाती है, तो बाबा भी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा? बहुत अच्छी तरह से देगा, क्योंकि बाबा भी जब देखते हैं कि हाँ बच्चे हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो बाबा सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो इसीलिए ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने की ये चारों तपस्या हमें सहज ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करा देती है। और जिसने भी जीवन के अंदर ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त किया, धीरे धीरे वो पुरुषार्थ से 108 की माला, क्योंकि 108 की माला कौन है? पास विथ ऑनर वाले। और पास विथ ऑनर किसको कहा जाता है? जिसने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया। जिसके पास सर्टिफिकेट आया वो पास विथ ऑनर नहीं है। दुनिया में भी जिसके पास सर्टिफिकेट आया उसको यूनिवर्सिटी वाले घोषित करते पास विथ ऑनर्स, ऑनर्स, है ना, पास विथ ऑनर्स, क्योंकि उसको सबका ऑनर मिल गया है। तो इसी तरह ये तपस्या जितनी हमारी सफल होती जाती है, उतना हमें तीनों सर्टिफिकेट बहुत सहज रीति से प्राप्त कर सकते हैं। और पास कर लिया, ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, माना 108 की माला में तो जरूर आना ही है उस व्यक्ति को। हमें कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, भाई आप मुझे ये सर्टिफिकेट दो दो दो, ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको प्राप्त करते जाते हैं, उतना अपने आप सबका सर्टिफिकेट मिलने लगता है। और मिलते ही मुझे इतना तो कंफर्म हो जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी पढ़ाई के आधार से ये जान सकते हैं कि मैं 108 में आने वाला हूँ या नहीं। 1008 दुनिया में, इसीलिए गुरुओं ने 1008 लिखा दिया अपने टाइटल में, है ना, कि भाई चलो 108 में नहीं, 1008 में तो आ जाएंगे, नहीं तो 16108 में रॉयल फैमिली में। तो मैं कहाँ पर आने वाला हूँ ये मुझे कंफर्म होने लगता है। अगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, माना मैं प्रजा, और अगर बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है, माना मैं दास दासियों में भी नंबर मेरा अपना दर्ज करा रही हूँ, ये कंफर्म हो रहा है। तो इसीलिए मुझे ये तीनों सर्टिफिकेट, कई बार कई लोग कहते हैं सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, मैं एक ही बात कहती हूँ, आप किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि खुश करने में आप खुद नाखुश हो जाते हैं। लेकिन आप एक ही बात का ध्यान रखो, मुझे बाबा को प्रसन्न करना है, अपने जीवन के इस तपस्या से मुझे बाबा को प्रसन्न करना। जब आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो दुनिया के लोग क्या है, भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन मैं अपने ये चारों तप को इतना अच्छे से करूं, इतना प्रैक्टिकल जीवन में उसको धारण करते हुए करूं, इस अभ्यास में इतना अपने आप को लगा दूं कि बाबा स्वयं मुझसे प्रसन्न हो जाए, और जब भगवान प्रसन्न होगा तो दुनिया तो वाह वाह के गीत गाने वाले बैठे ही है। मुझे दूसरे को खुश करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि आप एक को खुश करने जाएंगे दस को नाखुश कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना। तो दस लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं एक का सर्टिफिकेट लेने के पीछे, इसलिए मेन बात है कि हम अपनी तपस्या में रहे, और जितना हम अपनी तपस्या को अंदर ही अंदर सूक्ष्म स्तर तक ले आते हैं तो भगवान भी प्रसन्न सहज हो जाता है, और जब भगवान प्रसन्न है तो दुनिया आत्माएं सब खुश अपने आप होने लगती है। आप अपना उमंग उत्साह कम नहीं करो, क्योंकि दूसरे को खुश करने में कभी कभी हम अपना उमंग उत्साह गायब कर देते हैं, हमारी अपने अंदर की अवस्था एकदम डिग्रेड होने लगती है, तो अंदर की अवस्था के बल पर हम किसी और को खुश करने का प्रयत्न नहीं करें। मैं अपने पुरुषार्थ में निरंतर लगी रहूं, इस अभ्यास को इतना हम बढ़ाते जाए और इतना सुंदर रीति से ये अभ्यास करना शुरू कर दे कि बस मेरा जीवन स्पष्ट हो जाए, कि जहाँ हर कोई आत्मा प्रसन्न ही होंगी, जो मुलम्मा होगा, नम्र होगा, उससे हर कोई प्रसन्न रहने लगता है। तो इसीलिए बाबा भी अब समय अनुसार यही चाहता है, समय की पुकार भी अब यही है कि अब अपने जीवन के अंदर इन तपस्या की अग्नि को ऐसी प्रज्वलित करो जो आत्मा एकदम निखरना शुरू हो जाए, और वो दैवी संस्कारों से अपने आप को सजाना आरंभ कर दे, जिससे सतयुगी सुंदर सृष्टि के लिए भी मैं अपनी भूमिका को तैयार कर दूं। तो इसीलिए ये ब्राह्मण जीवन एक तपस्या है, पूरा जीवन तपस्या है, और उस तपस्वी जीवन के अंदर ये चार प्रकार के तप के ऊपर निरंतर मुझे अटेंशन देते हुए पुरुषार्थ करना है। कई लोग पूछते समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये चार बातों के ऊपर विशेष अटेंशन देते हुए आप ध्यान दो और कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यही समय अनुसार रियल तपस्या भी है, पुरुषार्थ भी है, और आगे बढ़ना, इसी को रिफाइन कर दो तो फाइन भरनी नहीं पड़ेगी अंत में, है ना, बाबा भी यही कहते हैं। अपने आप को ऐसा रिफाइन करो जो फाइन भरनी न पड़े, ठीक है। तो ये ब्राह्मण जीवन तपस्या जीवन है, उसको मुझे सफल करना ही है, ठीक है। चार विघ्नों के प्रति भी ध्यान देना है, वो विघ्न बीच में न आए, और चार अवस्था फाइनल जो मुझे प्राप्त करनी है वो लक्ष्य मेरे सामने स्पष्ट रहे। जहाँ कहीं पर भी गफलत हुई ये चारों तपस्या में, वहाँ विघ्न जरूर आएगा, विघ्न कई बार कहते हैं हमारे सामने विघ्न बहुत आते हैं, विघ्न इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका तपस्या पर अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई तपस्या भंग हो रही है तभी विघ्न आते हैं। वो तपस्या भंग हुई उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है विघ्न का आना, इसीलिए विघ्न आता है। तो अगर आप कहते हैं कि हमारे सामने आजकल बहुत विघ्न आते हैं तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई तपस्या मेरी भंग हो रही है, निरंतर नहीं है, इसलिए उसको चेक करो और इस तपस्या में अपने आप को स्थित करो, फाइनल कर लो, ताकि निर्विघ्न सहज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तब से मिलता जीवन का सुख, तब से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।